सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام سچی باتیں और सच्ची बातों में हमारे साथ होते हैं बच्चे। हम लेते हैं इनका तारुफ और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बुलाते हैं बच्चों को, आ जाएं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल।
माशाल्लाह। आपका नाम?
मोहम्मद मोहसिन।
मोहम्मद मोहसिन
जी,
माशाल्लाह, अल्लाह आपको खूब बरकत अता फरमाए।
आमीन।
आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं?
दारुल मदीना गुलशन बीएचएस।
वाह भाई, दारुल मदीना पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में?
क्लास सेवन।
क्लास सेवन में, माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर, बच्चे होते हैं, उनके जहन में कोई ना कोई एम होता है, कोई मकसद होता है कि हमें आगे जाके क्या करना है। तो मोहसिन भाई, आप बताएं कि आपका क्या एम है, क्या मकसद है कि आप क्या करना चाहते हैं?
इंशाल्लाह आलिम बनूंगा, फिर मुफ्ती बनूंगा।
आलिम बनेंगे और
मुफ्ती बनेंगे।
मुफ्ती बनेंगे, माशाल्लाह। अल्लाह आपको आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, माशाल्लाह। बहुत अच्छा एम है, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम?
मेरा नाम अब्दुल मोहित अत्तारी।
माशाल्लाह, नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप क्या करते हैं?
हाफिज़े कुरान बने।
माशाल्लाह, हाफिज कुरान बन रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो आपका आपका क्या मकसद है, आपकी जिंदगी का कोई ना कोई एम होगा अगर आपने बनाया है तो?
बड़े होके।
जी, बड़े होके
हाफिज आलिम मुफ्ती बनूं।
अच्छा, आपका भी यही एम है, माशाल्लाह। इनका वाला अल्लाह आप दोनों को आपके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए।
आमीन।
जी, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे बच्चों का तारुफ, जिसमें हमने इनका तारुफ भी लिया और इनका मकसद भी हमें पता चला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मकसद है दोनों का। अल्लाह इनके मकसद में इनको कामयाबी अता फरमाए, माशाल्लाह। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, जो दुरूद पाक की फजीलत पर मबनी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। माशाल्लाह। नियत कर लें प्यारे बच्चों, आप भी नियत कर लें कि जब भी मौका मिले, बल्कि मौका निकाल के, वक्त निकाल के हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाला कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में शामिल होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपना रूटीन बना लें कि 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। हमारे बहुत सारे कामों की रूटीन होती है। हम सुबह उठते हैं तो हमारी ब्रश करने की रूटीन होती है, इसके बाद हमारा वुजू करके नमाज पढ़ने की रूटीन होती है। अगर नहीं है बच्चों की तो होनी चाहिए ना, उठते ही पहला काम हमारा नमाज पढ़ना होना चाहिए, फजर की नमाज पढ़े उठते ही। तो इसी तरह दुरूद पाक को भी अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए कि पूरा दिन गुजर जाए और दुरूद पाक ना पढ़ा हो, ऐसा मुमकिन नहीं हो कि हम दुरूद पाक ना पढ़े और दिन गुजर जाए, ये कैसे हो सकता है। हमारी रूटीन के अंदर शामिल होना चाहिए। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी नियत कर लीजिए कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, और कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले भी शामिल होते हैं। प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान को अपने दूसरे मुसलमान भाई का एहतराम करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, और अपनी जानिब से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपनी तरफ से किसी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचे।
उवैस भाई, क्या मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं?
जी मोहसिन भाई और प्यारे बच्चों, मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तर्जमा, सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं। लिहाजा जो भी आपका मुसलमान भाई है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से आज हम मुसलमान भाइयों के दरमियान इज्जत और एहतराम खत्म होता जा रहा है, प्यार कम हो गया है, आपस में एक दूसरे का इज्जत नहीं करते, बल्कि आपने देखा होगा बाज बच्चे तो ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों की इंसल्ट कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी दिल आजारी कर देते हैं। तो ये दिल आजारी करना, इंसल्ट करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है ना, मुसलमान का दिल दुखाना। जितने भी हमें बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने मुसलमान भाई की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। हमारे दिल में उनकी इज्जत एहतराम होगा तो हम कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। सही है, तो हम आज से नियत कर लें अपने मुसलमान भाई की इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल।
वेद भाई, बात बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को बुरा भला कहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए उनको?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात बच्चे होते हैं ऐसे जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बल्कि आज की जो हमारी हदीस पाक है ना, वो भी इसी टॉपिक पर है, और मैं आपको हदीस पाक भी सुनाता हूँ। आज की हमारी हदीस पाक है, عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعن المؤمن قتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة। حضرت ثابت بن ضحاك رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جس نے کسی جان کو دنیا میں جس چیز کے ذریعے قتل کیا، کل بروز قیامت میں اسے اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس گناہ کو قتل کے گناہ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہے نا؟ اسی طرح کسی کو لعنت کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔
اویس بھائی، لعنت کہتے کسے ہیں؟
جی، لعنت کہتے ہیں کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کہنا یا دور کرنا۔
اللہ اکبر۔
یقین کے ساتھ کسی پر لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے وہ گناہگار ہو یا فرما بردار ہے، اس کو یقین کے ساتھ لعنت کرنا، اللہ کی رحمت سے دور کہنا یا دور کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ لعنت بہت سخت چیز ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں ہے جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن سے ثابت نہ ہو، یعنی جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو لعنت نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں بات بات پر لعنت یعنی ملامت کرنا، یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے۔ بات بات پہ ایک دوسرے کو لعنت کرنا، برا بلا کہنا، ملامت کرنا، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ عادت بن چکی ہے، اس طریقے سے کرتے۔ کچھ بچے بھی اس طرح سے ہوں گے جو بات بات پہ کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، کسی کو لعنت کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ کسی کو لعنت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کافر کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کسی کو لعنت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے اور مومن کے لائق نہیں۔ مسلمان کا کام تو اپنے مسلمان بھائی کی کیا کرنا ہے؟
عزت کرنا۔
عزت کرنا ہے۔ ہم نے پہلے شروع میں سنا نا کہ مسلمان بھائی کا کیا کام ہے، کہ اپنے مسلمان بھائی کی
عزت
کرے، احترام کرے، اس بات کا خاص خیال رکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن لعن طعن اور فحش یعنی بری بات نہیں کرتا۔ جو بچے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر یہ بری عادت ان میں ہے تو ان سے فوراً جان چھڑانی چاہیے۔ جو بچے ایسے ہیں جو بری بات کرتے ہیں، فحش گوئی کرتے ہیں یعنی بری بات کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، لعنت دیتے ہیں، تو اس سے ان کو فوراً جان چھڑانی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے۔
ویس بھائی، جب بھی کوئی بچہ دوسرے کو لعنت کرتا ہے تو وہ جاتی کہاں پہ؟
جی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جب کسی کو لعنت کرتے ہیں تو لعنت جاتی کہاں ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں۔ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب لعنت کرتا ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ آسمان کی طرف جاتی ہے، تو وہاں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ دائیں بائیں کہیں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو جس پر بھیجی گئی ہے، اگر وہ اس کا اہل ہوتا ہے تو اس کی طرف لوٹتی ہے، جس کو لعنت کری تھی اس کی طرف لوٹتی ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہوتا تو یہ لعنت وہیں اسی کے پر لوٹتی ہے جس نے لعنت دی تھی۔
استغفر اللہ۔ اچھا اویس بھائی، अब जिसने लानत दी थी अब लानत तो उसके ऊपर ही आई।
हाँ उसी की तरफ बाज़ूकात ऐसा होता है कि जो लानत देने वाला होता है, जिसको लानत करी थी उसने, वो उसका अहल नहीं होता, मतलब उसको लानत नहीं करनी चाहिए थी, जायज ही नहीं था, तो वो लानत करने वाले पर ही लौट कर आती है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैह रहमतुल हन्नान के वालिद हज़रत अल्लामा मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, किसी पर लानत करना सवाब का काम नहीं, किसी पर लानत करना ये सवाब का काम नहीं है। अगर कोई शख्स दिन भर शैतान पर लानत करता रहे, शैतान पर लानत करता रहे, लेकिन क्या फ़ायदा, इससे बेहतर तो ये जिक्र दुरूद में अपना दिन गुजारे, इससे कोई सवाब हासिल तो नहीं होगा ना। लानत करने से अगर किसी शैतान पर भी लानत कर रहा है तो इससे कोई सवाब तो हासिल नहीं होगा, इससे अच्छा तो ये दुरूद पाक पढ़ ले, इससे कम से कम सवाब तो हासिल होगा इसको, तो लानत नहीं करनी चाहिए। अगर इस काम में किसी काम में कोई फ़ायदा नहीं है तो इससे वो काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मौलाना लकी अली खान फरमाते हैं, अगर इस काम में हमारे लिए कुछ फ़ायदा होता तो अल्लाह पाक शैतान पर लानत करने का हुक्म देता, मगर अल्लाह ताला ने शैतान पर लानत करने का हुक्म नहीं दिया, तो हमें इससे बचना चाहिए। हमें जानवरों को भी लानत नहीं करनी चाहिए। कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने किसी वजह से एयर को, हवा को बुरा भला कहा। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हवा को बुरा भला ना कहो, क्योंकि हवा को चलाने वाला कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक के हुक्म, ये हवा जो है ये अल्लाह पाक के हुक्म की पाबंद है। जिसने किसी ऐसी चीज पर लानत की जिसकी वो अहल ना थी, तो वो लानत उसी पर लौट आएगी। अच्छा ये बताएं बच्चों कि लानत कब करता है बंदा?
जब बच्चा गुस्से में हो।
हाँ तो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते
उस भाई, गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते?
हाँ गुस्सा देखिए, गुस्सा आता तो सबको ही है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, नागवार गुजरती है तो गुस्सा तो आ जाता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बल्कि बड़े जो होते हैं वो तो गुस्सा भी कंट्रोल कर भी लेते हैं, इसलिए उनके अंदर शऊर होता है, समझ होती है, मगर बास बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनसे गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता, जिनसे
और वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैं क्या कह रहा हूँ।
बास बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको गुस्से में पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया,
किसी की दिल आजारी भी करते तो उनको समझ नहीं पड़ती कि मैंने क्या कर दिया।
हाँ तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। और गुस्से को कंट्रोल कैसे करेंगे? उलमा कलाम फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए तो बंदा अगर खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए, अगर फिर भी गुस्सा ख़त्म नहीं होता तो उसे क्या करना चाहिए, अपने गाल को ज़मीन पर मस कर देना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल।
गुस्सा क्या शैतान की तरफ से आता है?
हर बार जो गुस्सा है ना वो शैतान की तरफ से नहीं होता, बाज़ औक़ात तो शरीयत में मतलूब है, यानी शरीयत कहती है कि गुस्सा करो। जिस तरह अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, 7 साल से बड़ा हो गया, अब उसकी उम्र बड़ी हो रही है और वो नमाज नहीं पढ़ रहा, कुरान नमाज तो फर्ज है ना, नमाज नहीं पढ़ रहा, तो अब उसको नमाज के लिए उसके वालदेन को उसको गुस्सा करना चाहिए और सख्ती से उसको नमाज की तलकीन करनी चाहिए, नमाज का कहना चाहिए कि अब वो नमाज पढ़े, इसके लिए उसको गुस्सा करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पर शरीयत ने कहा है कि गुस्सा करो, बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहाँ गुस्से का मना फरमाया है शरीयत ने कि वहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ गुस्सा करके बंदा बहुत पछताता है, बहुत सारा बहुत बड़ा नुकसान कर देता है अपना। तो गुस्से को देखना है, गुस्से को समझना है कि यहाँ जो अगर गुस्सा आया है तो क्या शरीयत ने मुझे गुस्सा करने की यहाँ इजाज़त दी है, क्या गुस्सा मेरा किसी गुनाह पर तो ख़त्म नहीं हो रहा, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं कर रहा मैं, क्या मेरे गुस्से से कोई गुनाह का काम तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वज़ल उस गुस्से को समझ जाएंगे कि यहाँ गुस्सा करना जायज है या ना जायज है।
बाल बच्चे उधर भी गुस्सा कर जाते हैं, जैसे माँ बाप उनके फायदे के लिए कोई बात बता रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि आप इस तरह नहीं, ये बात इस तरह होती है, तो वो उधर भी गुस्सा करने लग जाते हैं और उस वक्त तो माजल्ला वो माँ बाप से बदतमीजी कर रहे होते हैं, वो उनकी बात नहीं मान रहे, उनसे जबान तराजी कर रहे, तो उस वक्त उनको अब क्या कहेंगे?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहसिन भाई कि बाल बच्चे इस तरह से होते हैं और ये अच्छे बच्चे नहीं होते, बहुत गंदे बच्चे होते हैं जो अपने वालदेन के आगे बदतमीजी करते हैं, गुस्से में आके वालदेन को क्या क्या कह देते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर बाज़ूकात गुस्से में और ज़्यादा होते हैं, बाहर जाके वालदेन की बुरी बातें करते हैं, तो तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
वो फिर वो बाहर बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो गुस्से में आके चुगलियां भी लगा देते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं और भी दूसरे काम कर देते हैं जो शरीयत मना फरमाती है।
यही तो हमारा टॉपिक है कि बुरी बातों से बचना है, तो गुस्सा करना भी बाज जगहों पे बुरी बात है, तो हमें इससे बचना है। और इससे बचने के लिए हमें इसकी वईद है, इसकी बुराई, जैसे गुस्से के जो नुकसान आते हैं ये हमें जानने होंगे कि गुस्सा करने के क्या क्या नुकसान आते हैं, जैसे वालदेन को गुस्सा करना या वालदेन के आगे बदतमीजी करना गुस्से में आकर, तो ये तो गुनाह का काम है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम है जो बच्चा हो या बड़ा हो गुस्से में आके कर जाता है, और रिवायतों में तो ऐसा आता है कि वो गुस्सा ऐसा गुस्से से बचना चाहिए जो गुनाह पर ख़त्म हो। तो हमें गुस्सा करना कहाँ है और कहाँ नहीं करना, इसकी नॉलेज हासिल करनी चाहिए। जब इसकी हमारे अंदर नॉलेज होगी, इसकी मालूमात होगी, तो हम अपने गुस्से को ऐसी जगह पे कंट्रोल करेंगे जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वालदेन का तो बहुत अदब व एहतराम करना चाहिए, वालदेन से बिल्कुल भी, कुरान शरीफ में तो यहाँ तक आया कि उफ तक नहीं कहना चाहिए। मतलब अगर वालदेन ने अगर आपको गुस्सा भी किया, डांटा भी है, तो आपको उफ तक भी नहीं कहना चाहिए। खामोशी से वालदेन की बात सुननी चाहिए और वालदेन की बात माननी चाहिए, इसी में भलाई है। वालदेन जब तक शरीयत के मुताबिक हमें बात कहे ना, हमें बात माननी है। अगर वालदेन कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ो, तो फिर वालदेन की भी बात नहीं माननी, नमाज पढ़नी है। इस तरीके से अगर वालदेन की जो जो बातें शरीयत के मुताबिक हैं, अगर वो गुस्सा भी करते हैं उसके लिए, तो हमें खामोशी से सुनना चाहिए। उस वक्त ज़रूरी है कि हम गुस्से को कंट्रोल करें।
उवैस भाई, बाज बच्चे हाथ से लानत का इशारा करते हैं, तो उनको ऐसे इशारे करने चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ से लानत के इशारे करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना हाथ से इशारा करना चाहिए, ना मुंह से कहना चाहिए, ना उसको इस तरह की कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले बच्चे का क्या होगा, दिल दुखेगा, उसकी दिल आजारी होगी, उसको बुरा फील होगा, और उससे आपके उसके दिल में क्या है, आपकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और ऐसा करना, किसी का दिल दुखाना, दिल आजारी करना, ये क्या है, गुनाह का काम है ना। तो हमें अपने दोस्तों का, बच्चों का, मुसलमान भाइयों का हमेशा क्या करना है, इज्जत और एहतराम करना है, बुरी बातों से बचना है, लानत देने से बचना है। आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमें बुरी बातों से बचना है, लान तान से बचना है, एक दूसरे को लानत देने से बचना है। जी तो मोहसिन भाई और अब्दुल मुईद भाई, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमें बुरी बातों से बचना चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपने हमारा टॉपिक सुना, आज का जो हमारा टॉपिक था वो बुरी बातों से बचना चाहिए, लान तान से बचना चाहिए, एक दूसरे को लानत देने से बचना चाहिए, जिसमें हमने बहुत सारी बातें सुनी, आपके सवालात के जवाब भी दिए। अगले एपिसोड में एक और हदीस पाक के साथ हाजिर होंगे, एक नया टॉपिक होगा, नए बच्चे होंगे इंशाल्लाह, और नई गुफ्तगू होगी। तो हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें और इसके हवाले से आप हमें फीडबैक भी दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त दिया। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी और मदनी चैनल के नाज़रीन से भी, कि जो हदीसें आपने लिखी, नोट की, सुनी, उसे याद रखें और उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसका आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह तआला खैरा व अहसनुल जज़ा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि।
सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।